श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 76वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 77वें श्लोक की चर्चा होनी है, जो आनंदादि विधेय गुण तथा अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण बताए गए हैं, उनके द्वारा उपलक्षित जो स्वरूप मात्र है अखंड एक रस, वह उपलक्षित होता है। अने आनंदादि गुणों से अखंडेक रसाकार वृत्ति बनती है और उस वृत्ति के विषयभूत अखंडेक रस ब्रह्म के साथ आनंदादि गुण तथा अस्थूलत्वादि गुणों का अन्वय नहीं होता, इसलिए उसे निर्गुण ही कहा जाता है। और तदाकार वृत्ति बनी इन गुणों से, इसलिए वृत्ति का आवर्तन रूप ध्यान भी उसका बनेगा। ये बताया गया था 73वें श्लोक में। तो कहा ज्ञान का भी विषय आनंदादि से उपलक्षित अखंडेक रस ब्रह्म है और उससे होने वाला ज्ञान वृत्त्यात्मक ही है और उपासना भी वृत्ति ही है। तो निर्गुण उपासना और निर्गुण ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर होगा, भेद होगा, क्या विशेषता होगी, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि ज्ञान वस्तुतंत्र है, उपासना पुरुष तंत्र है, ये दोनों में भेद है। पुरुष तंत्र का अर्थ है पुरुषाधीन, साधक के प्रयत्नाधीन, उपासना साधक के प्रयत्न से होती है, साधक प्रयत्न सापेक्ष उपासना, और वस्तु यानी विषय सापेक्ष ज्ञान होता है। ये दोनों में अंतर हुआ, प्रयत्न की अपेक्षा ज्ञान को नहीं है। और भी ज्ञान तथा ध्यान में अंतर दिखाने के लिए ज्ञान का साधन तथा फल 75 और 76 इन दो श्लोकों से बताया गया। ज्ञान का साधन है विचार, इसलिए कहा गया विचारात् जायते ज्ञानम्, विचार से विचारात् जायते बोधो, अनपेक्षा यम न निवर्तयेत, अनपेक्षा जिसको हटा नहीं सकती वस्तु के अधीन होने से, जो आनंदादि गुण बता करके आनंदादि गुणों से उपलक्षित अखंडैक ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है, उनका विचार करने से ज्ञान होगा और यदि चित्त में ज्ञान के उत्पादक उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई दोष नहीं है तो साधक के चाहने मात्र से न चाहने मात्र से ज्ञान रुकेगा नहीं, साधक की अनिच्छा ज्ञान को रोक नहीं पाएगी, ज्ञान उत्पन्न होगा ही होगा। ये तो ज्ञान का स्वभाव हुआ, विचार उसका साधन हुआ और अनिच्छा से न रुकने वाला ज्ञान का स्वभाव है। और फल है, सोत्पत्ति मात्र से समस्त संसार में सत्यत्व बुद्धि का बाध, सत्यता की निवृत्ति। और भी फल को स्पष्ट करते हुए 76वें श्लोक में कहा गया कि जैसे ही संसार में सत्यत्व बुद्धि बाधित हो जाती है, संसार बाधित हो जाता है, तो संसार को बाधित करने वाले ज्ञान मात्र से ही ज्ञानी में कृतकृत्यता आ जाती है, उसका कुछ भी कर्तव्य फिर शेष नहीं रहता। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, गीता के 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक बताता है कि वो कृतकृत्य हो जाता है पुरुषोत्तम स्वरूप के ज्ञान मात्र से। और उससे क्या होता है, तो जो नित्य तृप्ति है यानी शाश्वत सुख है, उसकी उपलब्धि होती है, आत्मानंद अभिव्यक्त होता है, आत्मानंद की अनुभूति करता है। और जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहता है प्रारब्ध क्षय की प्रतीक्षा करते हुए, वो चाहता है जल्दी प्रारब्ध समाप्त हो जाए और इस शरीर रूपी जेल से मुक्त हो जाए। शरीर का जो प्रयोजन है उसके जीवन में संपन्न हुआ, अब शरीर का कोई प्रयोजन रहा नहीं, लेकिन शरीर की अवस्थिति का हेतुभूत प्रारब्ध बाकी है, वह प्रारब्ध भोग करके क्षीण हो जाए, समाप्त हो जाए, इसी की प्रतीक्षा करता है। क्योंकि प्रारब्ध का भोग करके क्षय हुए बिना विधेय कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए छांदोग्य श्रुति कहती है तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्षे अथ संपत से। उस ज्ञानी के विधेय कैवल्य में उतना ही चीर यानि विलंब है, कितना, तो यावन विमोक्ष है का मतलब जब तक प्रारब्ध का भोग करके इस शरीर से शरीर का त्याग नहीं होता, और जैसे ही शरीर छूट जाता है अथ संपत से, तो विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है। शरीर का छूटना और विधेय कैवल्य का प्राप्त होना इनमें पौर्वापर्य नहीं है, योगपद्य है। पौर्वापर्य कहते हैं क्रम को, यानी कि शरीर छूटा तो कुछ वर्ष बाद विधेय कैवल्य प्राप्त होगा। जैसे ही शरीर छूट जाता है ज्ञानी का, तो सूक्ष्म शरीर अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के तत्व, और अज्ञान तो ज्ञान के समय ही कारण शरीर जो था समाप्त हुआ, और ये स्थूल शरीर इसकी अंत्येष्टि हो जाती है। प्रारब्ध समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर के तत्व ज्ञानी से छूट जाते हैं, सूक्ष्म शरीर का साक्षी के साथ संबंध है भ्रांतिज, और शरीर के साथ संबंध है कर्मज। और जब तक ये प्रारब्ध कर्म रहेगा तब तक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ बना रहता है, और जैसा ही प्रारब्ध का क्षय होता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का संबंध विच्छिन्न हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर को शरीरांतर के साथ संयुक्त करने वाला निमित्त भूत अविद्या काम कर्म न होने से सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। ये केवल ज्ञान से ही होता है। और वो भूत सूक्ष्म भी समाप्त हो जाता है ज्ञान से। अब उपाधि न रहने से जैसे ही उपाधि समाप्त हो गई उसी क्षण उपाधि का समाप्त होना और साक्षी का निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होना साथ साथ, वो निर्विशेष ब्रह्म ही है, उपाधि के कारण उससे अलग सा प्रतीत होता था, वो अलग सा प्रतीत होना बंद होगा, फिर वो ब्रह्म ही कहलाएगा, ये होगा। हाँ, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्म सन् ब्रह्मात्पेति। तो ये कहा कि जीवन मुक्त होकर के वह प्रारब्ध क्षय की प्रतीक्षा करता है, ये ज्ञान का फल है। ज्ञान का साधन है विचार, और ज्ञान का फल बताया संसार में सत्यत्व का बाध और कृतकृत्यता और शाश्वत सुख की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति और प्रारब्ध का क्षय की प्रतीक्षा, ये ब्रह्म ज्ञान का फल है। ब्रह्मज्ञानी ही शरीर छूटने की प्रतीक्षा करता है, उसे एक ही प्रतीक्षा रहती है कि शरीर कब छूटे। महाराज जी बताया करते थे जब साधना सदन आदि नहीं बना था, वे विद्या अध्ययन के पश्चात भ्रमण करते थे लंगोटी पर मात्र, एक लंगोटी पहनी हुई, एक लंगोटी साथ में और दूसरा कोई वस्त्र नहीं। मानसरोवर में भी ऐसे ही गए थे कैलाश, तो बद्रीनाथ जाते समय जोशी मठ में शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ है ना, उसमें रुके थे। उस समय शंकराचार्य थे ब्रह्मानंद जी महाराज, ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जो कर्पात्री जी महाराज के भी गुरु थे, अखंडानंद जी महाराज के भी वृंदावन वालों के गुरु थे। तो वे जो हैं ब्रह्मानंद जी महाराज, उनके समय महाराज जी कुछ दिन वहां रुके थे। उस समय महाराज जी की साधक अवस्था, उनकी परिपक्व अवस्था थी, सन्यासी जीवन बहुत लंबा था उनका, तो स्वाध्याय कराते थे, तो महाराज जी भी बैठते थे स्वाध्याय में, स्वाध्याय के बाद भी थोड़ा देर कुछ बैठ करके शंका समाधान उनसे कराते थे। तो महाराज जी ने पूछा कि सन्यासी का क्या कर्तव्य होता है, तो उन्होंने कहते हैं पंचदशी का, या तो इस ये जो चौथा पाद है 75वें श्लोक का, ये ध्यान दीजिए कि प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, इसी इस पाद का जो अर्थ है, इसी पादार्थ को बताने वाला दूसरा कोई एक शास्त्र का श्लोक बोला था कि मरणम एव प्रतीक्षेत, ऐसा कि सन्यासी मृत्यु की प्रतीक्षा करे, ये उसका कर्तव्य है। बाकी तो स्वरूप की उपलब्धि हुई है, असंग है सन्यासी, तो जिसको यानी विवेकी सन्यासी का क्या कर्तव्य है ये पूछा था, तो सन्यासी का कर्तव्य मृत्यु की प्रतीक्षा करना है, ये ब्रह्मानंद जी महाराज ने बताया था महाराज जी को उस समय, ये कह रहे थे। तो ये यहां पर प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, प्रारब्ध क्षय का अर्थ ही मृत्यु होता है, प्रारब्ध क्षय होने पर फिर जीवित रहना चाहेगा और कोई रखना भी चाहेगा तो रहने वाला भी रह नहीं सकता, और कितना भी कुछ प्रयत्न कर ले दूसरे भी रख नहीं सकते जीवित उसे, वो मृत्यु हो जाती है। तो प्रारब्ध क्षयम इक्षते का अर्थ ही होगा कि मृत्यु की प्रतीक्षा करता है ज्ञानी। तो ज्ञान की ये विशेषताएं हुई साधन तथा फल, इससे उपासना और ज्ञान का वैलक्षण्य कैसे ज्ञात होगा, तो उसे स्पष्ट करते हुए ज्ञान की ये विशेषताएं ध्यान में रखेंगे और ध्यान की जो विशेषताएं बताई जा रही हैं उसे भी समझेंगे तो दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। अभी 77वें श्लोक में बताया जा रहा है ध्यान की विशेषता को, साधन तथा फल को, ज्ञान के साधन फल को बता दिया। तो 77वें श्लोक का अवतरण जो है टीका में इसे देखिए, उपासना याश्च बोधात वैलक्षण्यांतर सिद्धये तद्दर्शयति। उपासना याश्च तद्दर्शयति, ऐसा अनुय करिए। तो उपासना के उसको बताते हैं, तत् का अर्थ होता है उसको, और तत् से किसको लेंगे, सर्वनाम है। तो जो बोध का बताया गया साधनादि, ऐसे उपासना की भी साधनादि को तत् शब्द से लेना, इसलिए उपासना याश्च तद्दर्शयति का अर्थ निकलेगा उपासना के साधन तथा फल को बताते हैं। तत्शब्द साधनादि का परामर्शक है, जैसे 75वें श्लोक के अवतरण में लिखा था न कि हेत्वादिकम, वही तत्शब्द से यहां पर लेना हेत्वादिकम। किसके हेत्वादि को, तो उपासनाया, तो उपासना के हेतु और फल को आदि शब्द से ग्राह्य बताते हैं विद्यारण्य स्वामी जी 75वें श्लोक से। किस लिए बताया जा रहा है उपासना का साधन और फल, तो कहते बोधात वैलक्षण्यांतर सिद्धये। उपासना का ज्ञान से वैलक्षण्यांतर निश्चित हो, इसलिए यानी ज्ञान से उपासना की अलग विशेषता प्रतीत हो। इसके लिए पहले एक विशेषता बताई कि उपासना पुरुष तंत्र है, बोध वस्तु तंत्र है। इस विशेषता से भिन्न और विशेषता को बोध की अपेक्षा उपासना के साधक समझे, इसलिए उपासना का साधन तथा फल बता रहे हैं। ज्ञान के साधन तथा फल को बताने के बाद, तो दोनों का साधन अलग अलग होने से, दोनों का फल अलग अलग होने से, दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान अलग है, उपासना अलग है, ये निर्धारण हो जाएगा। उस दृष्टि से यहां पर उसे ध्यान में रख करके उपासना के साधन फल को बताते हैं। तो 77वें श्लोक का उच्चारण कर लें, आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालूर विचारयन् चिन्तयेत् प्रत्ययैरन्यैः रनन्तरितवृत्तिभिः। आप्तोपदेशं विश्वस्य, अने श्रद्धालुः आप्तोपदेशं विश्वस्य अविचारयन् अन्यैः प्रत्यये अनंतरित वृत्ति भी ही चिंतयेत, ऐसा अन्वय करना। इसका अर्थ निकलता है श्रद्धालु ज्ञान में भी श्रद्धा चाहिए, लेकिन ज्ञान के लिए श्रद्धा के साथ साथ विचार भी चाहिए, उससे ज्ञान होगा। और यहां श्रद्धा मात्र, श्रद्धालु हां, विचार की आवश्यकता नहीं है। तो श्रद्धालु यानी श्रद्धा संपन्न जो है, श्रद्धा कहते हैं आस्तिक की बुद्धि को, प्रामाण्य बुद्धि को। किसके प्रति प्रामाण्य बुद्धि? तो वेद वाक्य और वेद वाक्यों का अर्थ बताने वाले आचार्य के वाक्य। तो वेदांत वाक्य तथा वेदांत अर्थ को प्रकट करने वाले आचार्य के वाक्यों के प्रति प्रामाण्य बुद्धि, ये श्रद्धा है। और वह प्रामाण्य बुद्धि जिसके अंदर है उसे कहा जाएगा श्रद्धालु। उपनिषदें जो बता रही हैं वो सही बता रही है, और उपनिषदों का अर्थ हमें जो उपनिषद व्याख्याता ने समझाया है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार का जो अंदर से विश्वास रूपावृत्ति, इसे कहा गया श्रद्धा। अंतकरण की बुद्धि की एक वृत्ति विशेष है वो, और वह वृत्ति विशेष जिसके अंदर होगी वो वृत्ति ही श्रद्धा कहलाती है, उसे कहा जाएगा श्रद्धालु। तो श्रद्धालु पदार्थ हुआ वेदांत वाक्य तथा वेदांत व्याख्याता आचार्य के व्याख्यान के प्रति प्रामाण्य बुद्धि रूप वृत्ति, ये सही कहा है उन्होंने, ऐसा निश्चय रूप जो वृत्ति है, प्रत्यय है बुद्धि का, वो श्रद्धा, उससे युक्त श्रद्धालु। और उसके बुद्धि में उपनिषदों के प्रति श्रद्धा होने के कारण प्रमाण विषयक संशय और विपर्य उत्पन्न नहीं होगा। प्रमाण है उपनिषद है, और उपनिषदों के उपनिषद विषयक संशय और विपर्य यानी भ्रांति किसको हो सकती है? जिसके बुद्धि में उपनिषद वाक्यों के प्रति विश्वास में कुछ कमी है, प्रामाण्य बुद्धि पूर्ण नहीं है, उपनिषदों के तरह ही अपने अनुभव को या प्रत्यक्ष आदि दूसरे प्रमाणों को भी समान प्रमाण मान रहा है, तो संशय हो सकता है, विपर्य हो सकता है, भ्रांति भी हो सकती है। तो फिर प्रमाण विषयक संशय और भ्रांति को मिटाने के लिए आवश्यक होता है वेदांतों का विचार, उपनिषदों का विचार, युक्ति से वह विचार होता है। श्रवण और मनन किसको करना पड़ता है? जिसको प्रमाण विषयक संशय और प्रमाण विषयक विपर्य बहुत बुद्धि में है, उसे श्रवण करना पड़ता है। श्रवण है विचार, और मनन है उपनिषद अर्थ विषयक चिंतन, वो करना पड़ता है उपनिषद अर्थ के विषय में। उपनिषदों ने बताया हुआ जो ब्रह्मात्म एकत्व है, इस विषय में संशय है, उपनिषद तथा उपनिषद उपदेष्टा आचार्य ने ब्रह्मात्म एकत्व उपनिषदों का तात्पर्य बता दिया, लेकिन इसमें संशय हो रहा है जिसकी बुद्धि में, माना जाता है इस संशय को हटाने के लिए उसे मनन की आवश्यकता है, मनन करने की। मनन से प्रमेय विषयक संशय दूर होता है और श्रद्धालु को जो उपनिषद है प्रमाण उसके विषय में संशय विपर्य नहीं होता, आचार्य के वाक्य के प्रति भी संशय विपर्य नहीं होता, इसलिए प्रमाण विषयक संशय विपर्य न होने से विचार की आवश्यकता नहीं है। एक बार सुना ठीक है, और प्रमेय विषयक संशय भी उसके बुद्धि में नहीं होगा। जीव ब्रह्मरूप ही है ऐसा वेदांत तथा वेदांत के व्याख्याता हमारे श्रद्धे आचार्य बताते हैं तो जीव ब्रह्मरूप ही है, भले ही मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, ऐसा उसे संशय रहित बोध होता है, संशय रहित परोक्ष निश्चय रहता है। इसलिए श्रवण मनन की उसे आवश्यकता श्रद्धालु को नहीं होती और जरूरत होती है असंख्य जन्मों से अनात्मा शरीर आदि का आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में पड़ा है ना, जो अशुभ संस्कार है, इसे विपरीत भावना कहते हैं। वह विपरीत भावना उसे श्रद्धा होने पर भी साक्षात्कार नहीं होने देती, तो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष विपरीत भावना बुद्धि में है श्रद्धालु के भी। श्रद्धा के साथ ये विपरीत भावना भी रहती है, वो पहले से अनुवृत्त हो रही है। इस विपरीत भावना को हटाने के लिए आवश्यक होता है उपनिषदों ने तथा उपनिषद व्याख्याताओं ने जो हमारा स्वरूप बताया है उस स्वरूप के आकार की वृत्तियों का विपरीत वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित आवर्तन, ये चिंतन कहलाता है, ये निर्ध्यासन कहलाता है, निर्गुण की उपासना कहलाता है। उस उपासना की जरूरत है और वो उपासना कर रहा है, तो उपासना का साधन हुआ श्रद्धा मुख्य मुख्य साधन है श्रद्धा। तो बिना संशय विपर्य किए प्रमाण में और प्रमेय में संशय किए बिना जो पहले से प्रमेय विषयक विपरीत भावना है दोष, उसे हटाने के लिए ब्रह्मात्म एकत्व विषयक वृत्ति का आवर्तन करता है। तो आवर्तन ये हो रहा है एक प्रकार से उपासना, ये यहां पर बताया, ये बताया कि आप्तोपदेशम विश्वस्य। तो आप्तोपदेशम इसमें आप्त है यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता कहते हैं जो उपनिषदों का सही सही अर्थ है वह बताने वाला वक्त, और उसका जो उपदेश है यानी उपनिषद व्याख्याता आचार्य का जो व्याख्यान है उपनिषद विषय को, उस पर विश्वस्य यानी विश्वास करके, विश्वास कर रहा है। क्यों? कि श्रद्धालु है, श्रद्धा उसे उपनिषद में संशय और विपर्य होने ही नहीं देती, प्रमेय में भी संशय नहीं होने देती, इसलिए विचार शब्दित श्रवण मनन की उसे आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है अविचारयन, श्रवण मनन के बिना केवल विपरीत भावना की निवृत्ति का साधन जो उपासना है वो करता है। उसे कह रहे हैं कि अन्यै ही प्रत्ययै, प्रत्यय कहते हैं वृत्ति को, और वृत्ति का विशेषण प्रत्यय का विशेषण है अन्य। तो अन्य प्रत्यय यानी उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ से भिन्न अर्थ विषयक वृत्ति, ये अन्य प्रत्यय कहलाएगा। वो हो जाएगी अनात्माकार वृत्तियां। उपनिषद अर्थ तो है आत्मा, और अन्य वृत्ति हो गई अनात्माकार वृत्ति, अन्य प्रत्यय शब्द का अर्थ। और उनसे अनंतरित जो वृत्ति यानी आत्माकार वृत्ति, अंतरित का अर्थ होता है व्यवहित, बीच बीच में आत्माकार वृत्ति भी हो रही है और फिर बीच में अनात्माकार वृत्ति भी हो रही है, तो ये माना जाएगा अनात्माकार वृत्तियों से व्यवहित आत्माकार वृत्ति, वो ध्यान नहीं कहलाता, वो निर्गुण की उपासना नहीं कहलाता। निर्गुण की उपासना है कि अनात्माकार वृत्तियों से व्यवधान रहित आत्माकार वृत्ति का तैल धारावत प्रवाह आवर्तन, ये निर्गुण उपासना है। ये करें, ये किस लिए करनी है? तो कहते हैं विपरीत भावना की निवृत्ति का साधन जो शुभ भावना है, शुभ संस्कार है, वो इस वृत्ति से बनेगा। शुभ संस्कार कहा जाता है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार। उपनिषद प्रतिपाद्य तत्व का आत्मरूप से संस्कार वह है शुभ संस्कार, और अशुभ संस्कार है अनात्मा देहादि का आत्मरूप से संस्कार। तो ये जो अनात्मा देहादि का आत्मरूप से संस्कार विपरीत भावना है, अशुभ संस्कार है, इसका विरोधी है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, और उसे अशुभ संस्कार से भी बलवान करने के लिए, बलवान शुभ संस्कार से अशुभ संस्कार हटेगा, इसलिए उसे बलवान करने के लिए बार बार ब्रह्म की आत्मरूप से वृत्ति का निरंतर प्रवाह, अनात्माकार वृत्तियों से व्यवधान रहित प्रवाह, इसे चिंतन यानी ध्यान कहा जाएगा निर्गुण का, निर्गुण की उपासना कहा जाएगा। और ये चिंतयेत, इसमें प्रेरणा की जा रही है, ऐसा करो कहा जा रहा है, का मतलब प्रयत्न साध्य है। ये अशुभ संस्कार बुद्धि में होने से वे आपकी अहम वृत्ति को, उनका विषय जो अनात्मा शरीर आदि है, उसे आलंबन करने के लिए अपने ओर खींचेंगे, अपने विषय के ओर ले जाएंगे, और आपको सावधानी से प्रयत्न करना है कि वे विपरीत भावना शब्दित अशुभ संस्कार हमारी वृत्ति को बलात् खींच करके शरीरादि की ओर न ले जाए आलंबन करने के लिए, अपितु अपनी अहम वृत्ति को उन अशुभ संस्कारों से बचाते हुए सर्वाभ्यंतर जो चेतन है, ब्रह्म है, उसी को आलंबन बनाने के लिए ब्रह्म की ओर ले जाना है। अशुभ संस्कार की चंगुल से बचाने के लिए और ब्रह्माश्रित करने के लिए अहम वृत्ति को प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसा प्रयत्न करो तो माना जाएगा उस प्रयत्न साध्य उपासना होगी। आपके प्रयत्न से अशुभ संस्कार जो अपहरण करने के लिए बुद्धि में बैठे हुए हैं अहम वृत्ति का, वे आपकी अहम वृत्ति का अपहरण नहीं कर पाएंगे, उनसे इसकी सुरक्षा करनी है प्रयत्न से, और ये करना है आत्मा में ही यानी ब्रह्म में ही अहम वृत्ति को ले जाना है। ये प्रयत्न, ये हो गया साधन उपासना का, इस प्रयत्न साध्य उपासना हुई और उसका फल होगा विपरीत भावना की निवृत्ति। अब ये इस प्रकार की उपासना कब तक करनी है, ज्ञान तो कब तक करना है ये नहीं होता, वो आप कर ही नहीं सकते, ज्ञान आपके प्रयत्न से साध्य नहीं है, वस्तु तंत्र है ना। और ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ जो अध्यास की निवृत्ति है वो करा करके कृतकृत्य कर देता है, लेकिन उपासना तो आपको अपने प्रयत्न से संपन्न करनी है। तो कब तक हम उपासना करें ये प्रश्न होता है। ब्रह्म का आत्मरूप से ध्यान कब तक करें, तो ये समय कब तक करना है वो अवधि निश्चित कर रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पहले प्रश्न है 78वें श्लोक के अवतरण के रूप में, कियंतम कालम चिंतयेत इति आशंक्य आह यावत चिंत्य स्वरूपत्व इत्यादि। तो कहते हैं कियंतम कालम यानी कब तक हम उपासना करें, तो इसका समाधान करते हुए 78वां श्लोक आ रहा है। 78वें श्लोक की चर्चा, अच्छा कल रविवार है, परसों, कल अनुध्याय है।